देखिए, अगर मैं अटेंशन और परसेप्शन की बात करूं तो सबसे पहले अगर जो भी हमारे लर्नर्स और लिसनर्स हमें सुन रहे हैं तो बहुत सारे स्टिमुली जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट में होंगे, बाहर बस चल रही होगी या उनके घर पे कुछ बात हो रही होगी किसी से, टीवी चल रहा होगा, हमारा ये मुक्त विद्यावाणी प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन व्हाट इज़ अटेंशन? आप अटेंड किसको कर रहे हैं? यू आर अटेंडिंग टू द मुक्त विद्यावाणी प्रोग्राम विच यू आर लिसनिंग राइट नाउ, और आप जो है टीवी पे ध्यान दे रहे हैं या आप किसी और चर्चा पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं पर भी होते हैं तो बहुत सारे स्टिमुली जो होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं। जैसे कि इस समय हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे साथ वाले कमरे में हमें जो है लोग दिख सकते हैं, मैं और आप सामने एक दूसरे के बैठे हैं, लाइट्स हैं और माइक है, टेबल है, देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमारे अराउंड है। लेकिन हम किसको, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी आर अटेंडिंग टू, हम किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? हम जो अभी चल रहा है हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो हमारी अटेंशन सबसे ज़्यादा कैच करेगा। एक तो ये अटेंशन है, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जब आप रोड पे जाते हो तो आप देखते हो कितने सारे लोग जो हैं वो हमसे रोज़ गुजरते हैं। जैसे मैं कई बार जब सुबह आती हूँ तो मैं देखती हूँ ट्रैफिक से जब हम लोग गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं, रोज़ दिखते हैं। और कुछ लोग कभी हम जैसे कितने हज़ारों बाइक्स और हज़ारों कार्स जा रही होती हैं लेकिन कोई एक बाइक या कोई एक कार या कोई एक व्यक्ति हमारी अटेंशन जो है वो खींच लेता है और हमें शाम तक याद रहता है।
जी
वो उस भीड़ में भी हमें वो लोग शाम तक याद रहते हैं। तो दैट इज़ हाउ डू वी अटेंड टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ अराउंड अस। अब क्या होता है कि इस इन्फॉर्मेशन को, जो मैंने आपको कहा कि हज़ारों स्कूटर्स और बाइक्स और कार्स, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सिचुएशंस हमारे आसपास चली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हम सिर्फ इतनी हज़ारों की इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ किसी एक इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं और हमें शाम तक याद रहती है। जैसे मान लीजिए आप जब ऑफिस आ रहे हो, आपने देखा कि बहुत ट्रैफिक जाम लग गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही हैं, स्कूटर्स हॉर्न बजा रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो एक व्यक्ति याद रहेगा जो सबका ट्रैफिक क्लियर करवा रहा है, आपको रहता है, ठीक है,
जी
क्योंकि दैट इज़ वन पर्सन हु हैज़ कॉट योर अटेंशन। तो यही वॉट इज़ अटेंशन, हम सिलेक्टिवली किस चीज़ को अटेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, दैट इज़ योर अटेंशन। और परसेप्शन का मतलब है कि जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हो तो आप उसको क्या मीनिंग देते हो। जैसे कि आपने अगर किसी चीज़ को देखा फिर आपने समझा कि ये एक फ्रूट है, ठीक है, तो उसको देखना कि इसका कलर क्या है, दैट इज़ आपने सेंसर से देखा कि क्या कलर है और उसको आपने एनालाइज किया, जो सेकंड स्टेज है, या आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका मतलब है ये केला है या ये आम है या ये सेब है, तो दैट मींस जो आपने उसको मीनिंग दिया दैट इज़ योर परसेप्शन, आपने कैसे उसको समझा। अब जब हम इस पे बारे में आज बात करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तो हम किस इन्फॉर्मेशन को अटेंड करते हैं, हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, जैसे हम कैसे मानते हैं कि ये लोग जो हैं वो सिमिलर तरह के लोग हैं, जैसे ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम कैसे बोलेंगे कि अगर इस तरह की दिखने वाली चीज़ें हैं तो वो एक सॉर्टिंग हम इस तरह से कर देंगे, दूसरी तरह की दिखने वाली चीज़ें हैं तो सॉर्टिंग हम उस तरह से कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम लोग आज बताएंगे कि जो हमारा अटेंशन है उसका नेचर ऑफ फंक्शन क्या होता है, मतलब हम किसे अटेंशन कहते हैं और अटेंशन हमारे लिए क्या क्या काम करता है। जैसे कि अभी मैं उसमें डिस्कस करूँगी, विजिलेंस फंक्शन है उसका, सिलेक्टिव अटेंशन है, लिमिटेड कैपेसिटीज चैनल है कि कुछ ही चीज़ों पर हम जो है वो ध्यान दे सकते हैं, सब चीज़ों पे नहीं दे सकते। साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि परसेप्शन क्या है, जब एक बार हमने अटेंशन को समझ लिया कि अटेंशन क्या है, हम किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर हाउ डू वी गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अटेंडेड टू, जिस इंफॉर्मेशन पे हमने अपना अटेंशन दिया था उस इंफॉर्मेशन को हम एक मीनिंग के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, दैट इज़ परसेप्शन। फिर हम लोग बात करेंगे कि हम जो शेप्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा शेप होगा, शेप क्या है, फिगर क्या है, ग्राउंड क्या है, जब मैं पूरा तरह से एक्सप्लेन करूँगी तो मैं बताऊँगी कि फिगर और ग्राउंड परसेप्शन क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी अटेंशन को जो है वो कैच करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्टिमुली हैं, बहुत सारे लोग हैं लेकिन कुछ ही लोग जो है हमारी अटेंशन को अटैच करते हैं। ऐसे मैं कई बार सोचती हूँ कि जब हम बहुत ट्रैफिक में आ रहे होते हैं तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हाई इन्होंने अपना बच्चा जो है वो किस तरह से पकड़ा है, ठीक है, तो वो कहीं गिर तो नहीं जाएगा, छूट तो नहीं जाएगा। तो इतने सारे चीज़ों में कौन सा फैक्टर है जिसने, जिस एक फैक्टर ने, मेरा क्या मोटिव है जिसने मेरी अटेंशन जो है हज़ारों में से सिर्फ एक उस इंसान पे लेके आई, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे अटेंशन पे जो हैं वो वर्क करते हैं, तो इन्हीं की आज हम लोग सब चर्चा करेंगे। हाँ, अब जब हम अटेंशन की बात करते हैं तो अटेंशन जो है हमारे लिए क्या पर्पस सर्व करती है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अटेंशन करती है, तो वो है कि इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जब हम अटेंशन की बात करते हैं तो उसमें होता है अलर्टिंग फंक्शन, मतलब हम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे कि जब आप क्लास में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो आप देखते हो जैसे ही टीचर क्लास में आ जाता है तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते। आपने कई बार देखा होगा बच्चे एक दूसरे पे कागज़ फेंकते हैं या फिर बातें कर रहे होते हैं, कुछ करते हैं, जैसे ही टीचर आ जाएगा, उनकी अटेंशन टीचर पे जाएगी, वो एकदम से अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। तो जैसे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया कि आप बहुत केयरफुली अगर ऑब्जर्व करें तो एक बिल्ली जो है जब उसने चूहे को पकड़ना है तो वो कितनी कितनी ध्यान से अपने जो टारगेट है उसकी तरफ देखती है, बिल्कुल वहाँ से हिलती नहीं, अपने पंजे कैसे गड़ा के रखती है, अपनी आंखें बिल्कुल फोकस करके रखती है और इतना अलर्ट होती है वो कि थोड़ा सा भी अगर उसको सिग्नल मिल जाए कि स्मेल आ जाए या चूहे की, या फिर उसको दिख जाए कि अभी मूवमेंट हुई है, तो एकदम से पंजा अड़ा के वो जो है चूहे को पकड़ लेती है। तो ये है अलर्टिंग फंक्शन, कि जो हमारा अटेंशन है उसका एक काम होता है कि वो हमें अलर्ट करता है हमारे टारगेट की तरफ, कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या चीज़ को देखना है। ठीक है, तो एक अलर्टिंग फंक्शन है। दूसरा जो हमारा फंक्शन जो अटेंशन करती है वो होते हैं सिलेक्टिव फंक्शन। सिलेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि एक इस पर हम लोग बात करते हैं जिसे हम कहते हैं टी पार्टी इफेक्ट या फिर कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। अब टी पार्टी इफेक्ट या कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, अब जैसे कि नाम हमने लिया सिलेक्टिव फंक्शन, अब सिलेक्टिव फंक्शन का मतलब है जैसे मानिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी ग्रुप में आप लोग बैठे हैं और आप अपनी जो बिल्कुल साथ में लड़की आपकी बैठी है या आपकी जो भी फ्रेंड बैठा है बैठी है उसके साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप अपने बातों में बिजी हैं कि मैं वहाँ गई थी, आज मैंने वहाँ शॉपिंग करी, मैंने ये ख़रीदा, मैंने, आप दोनों बहुत बिजी हैं बात करने में, लेकिन आपको अचानक से लगता है कि दूसरे वाले डेस्क पे या फिर तीन चार डेस्क छोड़ के किसी ने आपका नाम लिया। ठीक है, तो आपके कान जो है ना वो एकदम से ठनक जाते हैं, मेरा नाम लिया, तो फिर आपकी दोस्त जो बिल्कुल आपके साथ बैठी है वो आपको कुछ भी बोल रही हो, वो इतने नज़दीक आपके है, आपका ध्यान उसकी बात पे नहीं जाता, आप सिलेक्टिवली जो दूसरे लोग आपके जो तो आपसे थोड़ी दूर बैठे हैं कंपैरेटिवली उनकी बात पे जाते हैं कि अच्छा मेरा नाम आया था, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बहुत कॉमन सा फिनोमेना है, इसे कहते हैं टी पार्टी इफेक्ट या कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। जैसे कि कॉकटेल पार्टीज़ में आप लोग जाते हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कहीं पर पार्टी में जाएंगे और फिर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन आप सोचेंगे कि वहाँ जो साइड पर लोग खड़े हैं वो आपका नाम लेके आपकी कोई बात कर रहे हैं, तो जो आपके बिल्कुल साथ में खड़े हैं आपका अटेंशन जो है उनसे हट के बिल्कुल आप सिलेक्टिवली जो है वो दूसरे लोगों पे जो है वो करते हैं। तो सिलेक्टिव अटेंशन जो है वो एक और सिलेक्टिव फंक्शन जो है वो भी अटेंशन का एक पर्पज़ होता है, मैं आई विल अटेंड टू दिस सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर होता है लिमिटेड कैपेसिटी चैनल। लिमिटेड कैपेसिटी चैनल का मतलब है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अब हज़ारों की संख्या में इन्फॉर्मेशन आती है, तो जैसे मैंने आपको बताया सुबह ट्रैफिक का ही अगर आप एग्जांपल ले लें तो आप हर किसी को याद नहीं रख सकते कि किसने आपके साथ कैसा किया था। जैसे अभी मुझे याद है कि दो दिन पहले मेरी गाड़ी कहीं पे फंस गई थी, तो जब मेरी गाड़ी फंस गई तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो एकदम से पीछे जाने लगी, थोड़ी चढ़ाई थी, तो जब पीछे जाने लगी तो एक जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़े थे वो थोड़ा गुस्सा करने लगे, तो उनको वो तो किसी तरह से साइड से निकल गए, दूसरे जो थे उनको मैंने हाथ दिया तो वो रुक गए। फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर बाद जाके जब वो मेरे पीछे ही आ रहे थे, उसी लेन में आ रहे थे, तो उन्होंने मैंने ज़रा सा हल्की सी गाड़ी रोकी तो उन्होंने मुझे रोक के बोला कि बेटा मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आपकी गाड़ी ऐसे रुक जाती है तो इस तरह से आपको चलाना है। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है कि हज़ारों लोगों से मैं मिली, ठीक है, कितने सारे लोग थे लेकिन मुझे याद रहा कि उनका क्या जेस्चर था। तो दैट मीन्स हम लोगों की ना जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, हम हर किसी पे जो है वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ लिमिटेड कैपेसिटी चैनल है, कुछ ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये भी मुझे याद रहेगा कि जो मेरे इमीडिएट पीछे खड़े थे उनका क्या रिएक्शन था, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन होगा लेकिन जो मेरे इमीडिएट पीछे खड़े थे मेरा ध्यान सिर्फ उनके रिएक्शन पे गया। तो कहने का मतलब है कि अगर सीधे से शब्दों में समझना चाहें तो हम सब कुछ नहीं ले सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही होती हैं, तब तो हमारे दिमाग में ऐसे घंटियाँ बजती रहें, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो हम किसी एक टास्क को एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। मल्टीपल टास्क को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी केस में परफॉर्म कर सकते हैं जबकि हम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हों किसी चीज़ में। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपको ये बोलूँ मैं कि आप जो है गाना भी सुनते रहो पीछे, और जो इस पेपर पे लिखा है उसे भी आप पढ़ते रहो जो आपके SLM में लिखा है, तो आप दोनों चीज़ों को जो है वो पैरेलल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो आप गाने के रिदम पे और लिरिक्स पे ध्यान देंगे, या फिर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि क्या चीज़ लिखी गई है। जब भी कोई भी टास्क जो आपके अटेंशनल रिसोर्सेज को रिक्वायर करती है, तो आप सिर्फ एक ही टास्क को एक टाइम पे कर सकते हैं। सीरियल प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं, एक के बाद एक, पहले एक टास्क करते हो वो ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी टास्क करते हो, फिर तीसरी टास्क करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अटेंशन रिक्वायर करती है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अगर आप सुई में धागा डालेंगे ना, तो आप इतने उसमें ध्यान देते हैं सुई में धागा डालने पे कि उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि कोई और जो मुझे ये बुला रहा है कि ये कर दे वो कर दे, आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप बिल्कुल अटेंड करते हो इस बात को कि मुझे सुई के अंदर धागा डालना है, आप इतने फोकस होते हो। तो दैट मीन्स जो भी टास्क आपका फोकस और आपकी अटेंशन रिक्वायर करती है, इस तरह की टास्क के साथ आप बहुत सारी और चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप कर भी सकते हो, पर तभी जब आप बहुत स्किल्ड हो गए हो किसी चीज़ में। उसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे ड्राइविंग है, जब आप ड्राइविंग करते हैं, जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाने की अगर मैं बात करूं, तो शुरू में आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, आप देखते हो कि कैसे मेरे को गियर चेंज करना है, आगे इधर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, साइड पे तो नहीं आ रही है, और कोई आपके साथ बैठा होता है तो आप उनकी बात पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको बिल्कुल फोकस होके करना है। लेकिन जब आपको साल, 6 महीने, 2 साल गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, तो आपको गाड़ी चलाना जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके साथ साथ आप गाने भी सुन लेते हैं, साइड पे किसी से बात भी कर लेते हैं, फोन पे भी बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब वो जो गाड़ी चलाने की स्किल है वो आपका अटेंशन उतना रिक्वायर नहीं कर रही है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हैबिट हो चुकी है उस चीज़ की, तो आप हैबिचुअल हो चुके हो, तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है आपको, इसलिए आप दूसरी टास्क कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा फंक्शन हमारा अटेंशन का होता है वो होता है लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब हम कोई भी टास्क, हमारी अटेंशन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। हम सीरियल ऑर्डर में चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करती है अटेंशन, उसके साथ हम बाकी चीज़ें जो है नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस में कर सकते हैं ऐसा, हम एक से ज़्यादा टास्क जब हम किसी एक चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, तो इन दैट केस हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है विजिलेंस फंक्शन। विजिलेंस का मतलब होता है कि आप किसी एक इंफॉर्मेशन पे बहुत देर तक जो है वो देखते रहते हैं। जैसे कि आप रेडार स्क्रीन पे देखते हैं या फिर सस्टेन अटेंशन करके देखते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो भी टास्क जो ज़्यादा बड़ी हो या जो आपका ज़्यादा टैक्सिंग हो, टैक्सिंग का मतलब जो आपको ज़्यादा थका देती है, पर्टिकुलरली अगर कोई टास्क आप रोज़ ही करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो आप विजिलेंस के बारे में हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं कई बार ऐसा नोटिस करती हूँ कि जो हमारे सीमा पे जवान होते हैं ना, तो वो कितना विजिलेंस फंक्शन विजिलेंट रहते हैं, क्योंकि वो एक टक देखते रहते हैं सामने से कोई दुश्मन के लोग तो नहीं आ रहे। कितना उनका अलर्टिंग फंक्शन होता है, कितना उनको विजिलेंट रहना पड़ता है। और इसीलिए ड्यूटीज़ जो हैं वो डिवाइड की होती है कि इतने टाइम तक एक आदमी इधर रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी इधर रहेगा, क्योंकि ये टास्क जो है बहुत ज़्यादा आपका मेंटल एफर्ट इस पर लगता है। आपकी इतनी सी पलक झपकते की गलती जो है वो बहुत बड़ी उसमें बदल सकती है। तो अब क्या होता है कि विजिलेंस फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि सस्टेन्ड अटेंशन आपको देनी है, किसी चीज़ पे काफ़ी देर तक आपको जो है वो देखते रहना होता है। तो ये भी अटेंशन का एक कंपोनेंट होता है. तो जो अगर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करी, तो पहला है कि अटेंशन जो है हमें अलर्ट करना सिखाती है, अलर्टिंग फंक्शन करती है फुलफिल. दूसरा, सिलेक्टिवली हम इंफॉर्मेशन को अटेंड करते हैं. तीसरा, हम हर एक इंफॉर्मेशन को, सब कुछ जो बॉम्बार्डेड, जिसे कहते हैं बॉम्बार्डमेंट ऑफ सो मेनी इन्फॉर्मेशन, तो हम सबको नहीं लेते. जो हमारी अटेंशन जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे रिक्वायर्ड होती है, तो हम उस पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं. और लास्ट है जो है विजिलेंस फंक्शन. देखिए, हम लोग जो है ना, वो एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, जिसमें हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट शेप्स, फॉर्म्स, साइजेस और कलर्स की रहती है. हमारा जो एक्सपीरियंस होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड का, वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है. मतलब हमें बस ऐसे समझ आ जाता है कि किस चीज़ का क्या मतलब है. वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आता है, मैच्योरेशन से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एरर फ्री होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इल्यूजन्स भी जो हैं वो दिख जाते हैं. इल्यूजन्स का मतलब क्या है, जैसे रात को आप रस्सी देखेंगे तो आपको लगेगा वो एक सांप है. ऐसे कभी इल्यूजन्स हो जाते हैं हमारे को. तो जब हम इस जीवन में जीना चाहते हैं, इस वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, तो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है. ये इन्फॉर्मेशन जो है, यूजुअली हम अपने सेंस ऑर्गन से जो है वो लेते हैं. आपने पहले ही, हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो आसपास की इन्फॉर्मेशन है वो सेंस ऑर्गन्स हमारे को किस तरह से बताते हैं. लेकिन जिसमें हमने विजन, ऑडिशन, टच, इन सब की बात करी थी, लेकिन हम लोग इस सेक्शन में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि परसेप्शन क्या है. परसेप्शन का क्या मतलब है कि हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. बस जो मैंने एक बार सेंसेशन तो ले लिया, समझ तो लिया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगी, मतलब मैं उसका मतलब कैसे जानूंगी, मैं उसे एक मतलब, महत्व कैसे दूंगी, दैट इज़ योर परसेप्शन. तो सेंसेशन और परसेप्शन के बीच में जो डिफरेंस है, ऐसे तो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, एक बहुत आर्बिट्रेरी एंड्स है. जो डिवीजन है सेंसेशन और परसेप्शन की, वो सिर्फ साइंटिफिक एनालिसिस के लिए की जाती है. और जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो परसेप्शन को कहते हैं कि आपने क्या इंटरप्रेट किया अपनी सेंसेशन से. सेंसेशन मतलब अगर आपने पीला देखा, तो पीला देखने पर आपने क्या इंटरप्रेट किया कि ये पीला क्या है, तो ये क्या ये पीला आम है या क्या ये पीला फूल है. मतलब आपने व्हाट इंटरप्रिटेशन यू आर गिविंग टू व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट मीनिंग यू आर गिविंग टू इट इज नोन एज द परसेप्शन. जब हम लोग परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं परसेप्शन ऑफ शेप कैसे करते हैं. ठीक है, तो परसेप्शन ऑफ शेप का मतलब है कि हम लोग बात करेंगे कि फिगर एंड ग्राउंड. फिगर एंड ग्राउंड का मतलब होता है कि देखिए, आप जब भी कोई चीज़ को परसीव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने फोटो फ्रेम रखा है, तो फोटो फ्रेम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उभर के आती हैं और कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में होती है. उसे कहते हैं फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन. जो बाहर उभर के आ रहा है वो फिगर बन जाती है, जो प्लेन नज़र आ रहा है वो ग्राउंड बन जाते हैं. इस तरह से आप चीज़ों को परसीव करने की जो है वो कोशिश करते हैं. अगर फिगर और ग्राउंड सेग्रीगेशन नहीं होता, तो हमारे लिए ये जो वर्ल्ड होता ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता. अगर हम शेप की बात करें, शेप या फॉर्म जो है वो विजुअल फील्ड में हम कैसे करते हैं कि कॉन्टूर्स होते हैं. कॉन्टूर्स का मतलब होता है कि एक ना ऐसे शार्प फीचर्स होते हैं जो फिगर और ग्राउंड को जो हैं वो अलग करती हैं. कि मतलब जैसे अगर आप किसी फोटो फ्रेम में भी देखेंगे ना, तो फोटो फ्रेम में कुछ ऐसे बॉर्डर्स होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये फिगर्स हैं और इसके पीछे जो प्लेन एरिया नज़र आ रहा है वो ग्राउंड है. अगर हम एग्जांपल इसका बताएं, तो जो आपके, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं या आप ये किताब में अगर देखें, तो किताब में जो अक्षर लिखे गए हैं वो है फिगर, और वो जिस ग्राउंड पे लिखे गए हैं, जिस पेपर पे लिखे गए हैं, वो है ग्राउंड. तो ये होता है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन. फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बात के लिए कि आप शेप का परसेप्शन कर सकें. अब अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि आप कोई ये देखते हैं, कोई फोटो फ्रेम देखते हैं, उस फोटो फ्रेम में आप मुझे कैसे बताएंगे कि फोटो फ्रेम में वो किसी व्यक्ति की फोटो है, और वो व्यक्ति की फोटो क्यों है, और उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है. अगर आप व्यक्ति को उसके बैकग्राउंड के साथ जो है बिल्कुल मिला दें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ है. फिगर क्या है, मतलब इज इट द इमेज ऑफ अ पर्सन एंड देर इज अ सीनरी बिहाइंड दैट पर्सन. तो आप सीनरी को एज बैकग्राउंड लेंगे, ग्राउंड लेंगे, और उसके आगे जो उभर के इमेज आ रही है वो है आपका मैन. तो ये फिगर ग्राउंड परसेप्शन जो होती है, ये शेप का जो जब हम परसेप्शन करते हैं उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी होती है. जैसे कि अगर आप ये मान लीजिए कि जो आप जब गाना सुनते हैं तो जो वोकल पार्ट ऑफ द म्यूज़िक है, मतलब जो इंसान क्या गा रहा है, उसके लिरिक्स क्या है, वो फिगर बन जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, वो ग्राउंड बन जाता है. समझ रहे हैं कि एक आप एक एक कोई इंसान लिरिक्स गा रहा है, कोई भी गाना गा रहा है, तो वो जो गाना गा रहा है वो फिगर बन जाएगा, और उसके बैकग्राउंड में जो हारमोनियम बज रहा है या गिटार बज रहा है, जो भी म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, वो उसका ग्राउंड बन जाएगा. तो फिगर ग्राउंड परसेप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है. हमें अपने जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या चीज़ क्या है, मैं क्या सुन रही हूँ, इस चीज़ का क्या मतलब है, मीनिंग देने के लिए जो है ये फिगर ग्राउंड परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम डिस्टिंक्शन करें कि फिगर और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है, तो वो ये होता है कि फिगर की हमेशा एक शेप होती है. जैसे कि अगर आप किसी एनिमल की तस्वीर ले लीजिए, किसी तस्वीर पे एक जानवर बना है या कोई व्यक्ति बना है या कोई फूल बना है, तो जो फिगर है उसका एक शेप है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है वो शेपलेस है. मतलब जो उसके पीछे वाइट फ्रेम है उसका कोई शेप तो नहीं है ना, दैट इज शेपलेस. तो एक तो ये डिस्टिंक्शन है कि फिगर हैज़ अ शेप एंड ग्राउंड इज रिलेटिवली शेपलेस. और जो ग्राउंड है वो फिगर से ज़्यादा एक्सटेंड होता है. फिगर तो एक जैसे मान लीजिए सेंटर में आएगी, लेकिन उसका जो ग्राउंड है वो थोड़ा जो है वो फैला हुआ होता है. फिगर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जबकि बैकग्राउंड जो होता है वो अनफॉर्म्ड मटेरियल होता है. फिगर होगा कि वो उसमें क्या कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टूर्स हैं साइड पे लगाए. वो कॉन्टूर्स को आप ऐसे कह सकते हैं, वो हम कहते हैं ना कि बाउंड्री लगा दो इसकी, ये ऐसे आउटलाइन कर दो, जिसे आउटलाइन आप कहेंगे. तो वो आउटलाइन से आपको पता चल जाएगा ना कि जहाँ तक ये आउटलाइन बनी है, दैट मीन्स वो उसके अंदर जो है वो एक फिगर है और उसके बाहर जो है वो ग्राउंड है. जो फिगर है वो यूजुअली फ्रंट में आती है और जो बैकग्राउंड है वो ऑब्वियसली पीछे आता है. जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया जो भी अक्षर है, अक्षर जो है वो फिगर है और ब्लैक बोर्ड जो है वो ग्राउंड है. तो अक्षर फ्रंट में उभर के आ रहे हैं और बैकग्राउंड जो है वो पीछे आ रहा है. ये कुछ डिस्टिंक्शन होती है जिसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फिगर क्या है और ग्राउंड क्या है. देखिए, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज का मतलब है कि जब भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मतलब जो भी हमने परसीव किया अब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसे कर रहे हैं, तो उसके कुछ लॉज होते हैं. पहला लॉ होता है लॉ ऑफ प्रेगनेंस. लॉ ऑफ प्रेगनेंस ये बताता है कि परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज बी एज गुड एज द प्रिवेलिंग कंडीशन अलॉस. जिसका मतलब है कि जो भी आपको सबसे पहले, जिसमें आपका लीस्ट कॉग्निटिव एफर्ट किसी चीज में लगेगा, जो आपको जैसा दिख रहा है आप उसको वैसा ही परसीव करेंगे. ठीक है, प्रेगनेंस का मतलब ही ये होता है कि जो सिंपलेस्ट पैटर्न आपको लगेगा कि अच्छा, अगर ये तीन लाइनें जो है एक एक तरफ है, दूसरी दूसरी तरफ है और तीसरी जो है नीचे है, तो इसका मतलब द सिंपलेस्ट इज इट इज अ ट्राइंगल. ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट लॉ ऑफ प्रेगनेंस का मतलब जो भी प्रिवेलिंग कंडीशंस जिस भी चीज़ में वो है वो अलाउ कर रही हैं, वो आपको बताएंगे कि दैट इज़ लॉ ऑफ प्रेगनेंस. अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे होके कहीं लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, जोर जोर से बात हो रही है, तो लॉ ऑफ प्रेगनेंस बताएगा यहाँ पे झगड़ा हो रहा है. समझ रहे हैं आप, जो चीज बिल्कुल आपको इजीली जो आपको
वो समझ में आ जाए
कि अच्छा ऐसा ही ये इसका तो यही मतलब हो सकता है, तो दैट इज हाउ यू परसीव एंड ऑर्गेनाइज दी परसेप्शन अराउंड यू. फिर है प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जो भी स्टिमुली जो एक साथ स्पेस और टाइम में इकट्ठे दिखाई देते हैं, उनको हम एक ग्रुप में जो है वो एज टुगेदर हम लोग रखते हैं. जैसे कि अगर आप अपना ये हमारा लेसन देखें, तो लेसन में आप ये जो फिगर 5.3 बनी है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये थ्री ग्रुप्स हैं टू वर्टिकल लाइंस के. आप इसे कभी सिक्स इंडिविजुअल लाइंस नहीं कहेंगे. वो क्यों नहीं आप कहेंगे, वैसे ये छह इंडिविजुअल लाइंस हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि छह लाइंस को दो दो के ग्रुप्स में, दो एक साथ, दो उसके साथ और दो, तो कौन सी चीज़ें आपस में जो है इकट्ठी इकट्ठी रिलेट कर रही हैं. अब देखिए कि अब ग्रुपिंग्स कैसे होती हैं. वो लोग उस तरफ जो है बिल्कुल साथ में बैठे हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनसे अलग पीठ करके दूसरी तरफ साथ में बैठे हैं, तो आप उनको ग्रुप्स में बांटेंगे ना, आप ये करेंगे कि जो लोग ज्यादा नजदीक एक साथ बैठे हैं झुंड बना के, तो झुंड बना है दैट मींस वो सब लोग आसपास बैठे हैं, उनका प्रॉक्सिमिटी जो है ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ में है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, तो दैट मींस जो झुंड में इकट्ठे इकट्ठे आपको दिखेंगे, जो जितना ज्यादा क्लोज होंगे उनको आप एज अ ग्रुप कंसिडर करेंगे रादर देन एज सिंगल इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल, जैसे कि इसमें इंडिविजुअल लाइंस। फिर होता है सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज इन अदर लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कहते हैं कि जब एलिमेंट्स जो हैं उनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे विल बी ग्रुप्ड टुगेदर। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें डिफरेंट शेप्स दी है, लेकिन हम लोग बोलेंगे एक इन्होंने जो शेप्स दी हैं वो स्क्वायर की दी हैं, जो फिगर आपका 5.4 है आपके बुक में, तो उसमें जो एक जो फिगर है वो स्क्वायर्स की दी है, एक जो फिगर है वो उन्होंने ट्रायंगल्स की दी है, और एक फिगर जो है वो उन्होंने सर्कल्स की दी है। मतलब एक ट्रायंगल का ग्रुप है, एक सर्कल का ग्रुप है, और एक स्क्वायर का ग्रुप है। आपने किस बेसिस पे बोला कि ये लोग जो है वो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग ग्रुप्स में है, क्योंकि जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक ग्रुप में है, जो स्क्वायर है वो एक जैसे दिखते हैं तो उनको आपने एक ग्रुपिंग बना दिया, ट्रायंगल्स एक जैसे दिखते हैं तो एक दूसरा ग्रुपिंग बना दिया, और तीसरा। तो हम इसी तरह से जो है अपने आसपास भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो एक जैसे दिखने वाली चीजें, लोग, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक समूह में डालते हैं और बाकियों को दूसरे समूह में, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी दैट पीपल और ऑब्जेक्ट्स शेयर विद देम। एंड लास्ट इज क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है एक इनकम्प्लीट फिगर जो है कभी कभी आपको कम्प्लीट लगती है, जैसे कि अगर आप अपने फिगर 5.5 में देखें तो उसमें तीन लाइन्स दी गई हैं, वो लाइन्स जिस तरह से दी गई हैं कि वो आप परसीव करोगे कि वो एक जो है वो एक ट्राइंगल बना है, ऑल्दो वो ट्राइंगल बना नहीं है क्योंकि लाइन्स कहीं से भी जुड़ी नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि इनकम्प्लीट फिगर को आप एक ट्राइंगल जो है उसको आप जो गैप्स हैं वो अपने आप फिल करोगे। आप ये इसलिए ऐसा करोगे कि क्लोजर लाइक फिनोमेना होता है, इसे हम कहते हैं वी टेंड टू क्लोज द थिंग्स। क्लोजर लाइक फिनोमेना इज सब्जेक्टिव कॉन्टूर्स, मतलब आप अपने अब ये जो हमारा क्लोजर करने का फिनोमेना है वो हमारे अपने ही कॉन्टूर्स ले आएगा। सब्जेक्टिव कॉन्टूर्स का मतलब ऑल्दो इनको कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, कोई लाइन्स इनको बना नहीं रही है, लेकिन ये जो मेरा अपना जो तरीका है चीज़ों को परसीव करने का वो मैं सब्जेक्टिवली ही इन जो गैप्स हैं उनको बंद कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, और फिर क्लोजर और अपना सब्जेक्टिव कॉन्टूर्स जो हैं वो उसमें डाल दूंगी, ऑल्दो ट्राइंगल है नहीं लेकिन मैं मानूंगी तो ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इल्यूजन्स का मतलब होता है आपका मिस इंटरप्रेट जब आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन को करते हो, जैसे कि इल्यूजन्स को हम कई बार फॉल्स परसेप्शन भी कहते हैं, जैसे कि आप जब अंधेरे में जाते हैं तो एक अगर आप मोटी रस्सी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वो एक स्नेक है, सांप है। इल्यूजन जो है दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना विच इज परसीव्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, वो किसी भी एक नॉर्मल फिनोमेना है जो सारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है जो चीजें कभी एग्जिस्ट नहीं भी करती उनके बारे में भी जो है वो सोच लेते हैं। आपने कई बार मून इल्यूजन देखा होगा। मून इल्यूजन क्या होता है कि जब मून जो है होराइजन पे आता है, थोड़ा नीचे आता है, तो हमको लगता है कि उसका साइज जो है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू जब मून जो है वो जेनिथ पे सबसे ऊपर है। साइज तो सेम रहेगा ना मून का, लेकिन हमें इल्यूजन होता है कि क्योंकि वो इधर नीचे आ गया है तो उसका साइज बड़ा हो गया, और ऊपर था तो उसका साइज छोटा था। दैट इज अ मून इल्यूजन। ये इसलिए होता है कि जो रेटिनल इमेज है जब मून की, जब वो होराइजन पे होता है तब कौन सी रेटिनल इमेज हमारे आंखों में पड़ती है, और जब जेनिथ पे है तब भी सेम ही है, रेटिनल इमेज जो है वो सेम रहती है, लेकिन क्या होता है कि परसीव्ड साइज जो है वो हमारे को अलग दिखता है। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि साइज और डिस्टेंस का रिलेशनशिप। हेल्महोल्ट्ज़ जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जजमेंट जो होती है साइज की वो किस बात से रिलेटेड होती है कि डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेटिनल एंगल को देखें तो अगर हम ये कहें कि रेटिनल एंगल को हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन अगर जो जज डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मोर देन फिजिकल डिस्टेंस है देन द परसीव्ड साइज विल ऑल्सो बी लार्जर। कि मतलब कोई भी जो आपका डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस से लगता है आपको कि ज़्यादा है तो उसका परसीव्ड साइज जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स भी आते हैं, जिसमें हम मुलर लाइल इल्यूजन की एक बात करते हैं. मुलर लाइल इल्यूजन के बारे में अगर आप देखें तो फिगर दी है उसमें. मुलर लाइल इल्यूजन में क्या होता है कि दो लाइंस जो है वो दी जाती हैं. दो लाइंस में एक में एरो अंदर को लगे होते हैं, एक में एरो बाहर को लगे होते हैं. तो जब हम पूछते हैं कि बड़ा फिगर कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो यूजली जो बाहर जो एरोज लगे होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये फिगर, जो ये वाली फिगर है ये बड़ी है. लेकिन ये इल्यूजन होता है, क्योंकि फिगर्स का साइज और शेप जो है वो दोनों जो है वो सेम रहता है. तो ये भी एक तरह का इल्यूजन होता है. अब हम लोग अपनी चर्चा के एक्चुअली एंड में आ रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में ये बताना चाहूँगी कि हम जो है परसेप्शन ऑफ स्पेस कैसे करते हैं. स्पेस का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है, हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, हमारे कितनी नज़दीक है, किसी की डेप्थ कितनी है और किसी का डिस्टेंस कितना है. तो उसके लिए हम लोग जो हैं यूजली इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते हैं. अगर हम लोग बात करें तो हम बाइनोक्युलर और मोनोक्युलर क्यूज़ की जो है यूज़ करते हैं, और कुछ क्यूज़ जो होते हैं उन्हें हम नॉन विजुअल क्यूज़ कहते हैं. बाइनोक्युलर का मतलब दोनों आंखों से जब हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं बाइनोक्युलर क्यूज़. जो भी, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो किसी चीज़ की डेप्थ है. मोनोक्युलर क्यू होता है, क्यू मतलब जो हमारे को एक चीज़ बता रहा है कि कितना दूर है कोई चीज़. तो मोनोक्युलर क्यू होता है जिसको हम एक आंख से भी बता सकते हैं. और नॉन विजुअल क्यूज जो है, दो तरह के नॉन विजुअल क्यूज होते हैं. वो होते हैं जिसमें मतलब विजन इज नॉट एज सच इन्वॉल्व. एक होता है एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस आर द टू नॉन विजुअल क्यूज. ये क्यूज जो होते हैं इन्हें नॉन विजुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी रेटिनल इमेज से जो है इनका कोई जो है लेना देना नहीं होता है. अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो जैसे कि हम लोग जब एकोमोडेशन, जैसे हम कैमरा में अपने आप को फोकस करते हैं तो इमेज जो है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वो भी फोकस होती है हमारे रेटिना पे विद द हेल्प ऑफ लेंस इन द आई. ठीक है, तो क्या होता है कि जो लेंस है वो किस तरह से एडजस्टेड होता है, जैसे हमने पिछले अपने लेसन में पढ़ा था कि जो सिलेरली मसल्स होती हैं वो किस तरह से फोकस करती हैं फार और नियर ऑब्जेक्ट पे, वो कितना फोकस करेंगी, कैसे वो एक्सपैंड करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. तो लेंस जो होता है वो एडजस्ट कर पाएगा. जो जब किसी भी इमेज को हमारा आई का लेंस जो है वो देख रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ सिलेरली मसल्स अपने आप को एडजस्ट करता है जो भी दूर या पास की चीज़ों को देखने के लिए. तो सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो चेंज करती हैं, चेंजेस द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस सो दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्लियरली फोकस्ड. और इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, की कोई चीज़ कितनी दूर है कितनी पास है, तो वो जब हमारा लेंस उस चीज़ को फोकस करेगा तो वो जो मसल्स अंदर हैं वो किस तरह से अपना जो है वो अकोमोडेट कर रही है, तो उससे हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ कितनी दूर और कितनी पास है. उसके बाद आता है कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी प्रिंटेड लाइन पे कुछ लेटर्स को जो है वो पढ़ रहे हो तो आप ये देखते हो कि आपकी आईज जो है वो कन्वर्ज हो रही है, एक साथ मिल रही है विद द हेल्प ऑफ इंट्राओक्युलर मसल्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड दी आउटसाइड ईच आई. जो एक्सटेंट है कन्वर्जेंस का वो कब अचीव होता है, जब हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है एंड द और ये हमें ये क्यू प्रोवाइड करता है कि हमारी आईज जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं. इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जब कोई भी चीज़ें हमसे दूर होती हैं तो हमारी आईज जो होती हैं वो ज़्यादा पैरेलल दिखती है. मतलब वो ऐसे जितने दूर जाएगी कोई इमेज, अगर आप इमेजिन करो तो आपकी ये जो इमेजेस हैं आईज हैं वो पैरेलल चलेंगी, तो आपको पता चलेगा वो दूर आ रही है. लेकिन कोई चीज़ जितनी नज़दीक आएंगी तो वो आप कन्वर्ज करोगे अपने आईज को, कन्वर्जेंस उसे हम कहेंगे. तो इस तरह से जो है ये नॉन विजुअल क्यूज की हेल्प से हम लोग अपने डेप्थ और डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसमें आज तो हम लोग ये क्योंकि नहीं कर पाएंगे, आगे हमारे को बाइनोक्युलर और मोनोक्युलर क्यूज जो है वो उसके विषय में चर्चा करनी है. साथ ही साथ हमारे को ये भी जानना है कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी परसेप्शन को. तो ये जो हमारा अगला कार्यक्रम होगा उस पर हम देखेंगे. आज के लिए बस हमने यही जाना कि अटेंशन क्या है, परसेप्शन क्या है, अटेंशन के फंक्शंस जो हमने अलर्टिंग फंक्शन है उसका, विजिलेंस फंक्शन है, सिलेक्टिव फंक्शन है, उसके बारे में जाना. साथ साथ में हमने ये देखा कि कौन से डिफरेंट क्यूज हैं जो जिसमें हमने सिर्फ अभी आज हमने नॉन विजुअल क्यूज की चर्चा की है उसके बारे में हमने जाना, और क्या इल्यूजन क्या है, परसेप्शन क्या है, और अलग अलग तरह के कौन से इल्यूजन्स है उसके बारे में हमने जाना.